हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वेदांत के कमरे में आ गई। उसने जैसे ही देखा कि वेदांत विहा को किस कर रहा है, वो जल्दी से मुड़कर दरवाजे को पीटते हुए बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनते ही वेदांत एक झटके से विहा से अलग हो गया और फिर बेड से उठते हुए बोला, आप अंदर तो आ चुकी हैं, अब क्या पूछ रही हैं कि अंदर आना है कि नहीं? जल्दी से आओ, देखो इसे, इसे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर अंदर जाकर विहा को चेक करने लगी। विहा का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था, वो डॉक्टर से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, तो वहीं उसी के साथ अनाही भी तेज कदमों से चलती हुई वहां आ चुकी थी। अनाही को देखकर वेदांत उसके पास जाते हुए बोला, तुम्हारी बहन बहुत रो रही थी, ऐसे बोल रही है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। अपना मैंने फैसला कर लिया है, मैं फिर से कभी उसे प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। कितना ज़्यादा दर्द होता है, मेरी बेबी ये सब कुछ नहीं सह सकती है। अनाही ने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, अपना बेबी पुराण तो बंद करो, आपको नहीं पता है विहा को बच्चे कितने ज़्यादा पसंद हैं, उसको मत बोल देना ऐसा कभी, वरना ऐसा नाराज़ होगी ना, आप कभी उसे मना नहीं पाओगे। वेदांत ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और फिर मन ही मन डॉक्टर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने विहा को चेक करके एक इंजेक्शन दिया था, जिससे उसकी पेन कम होने लगा था। फिर डॉक्टर वेदांत और अनाही के पास आते हुए बोली, ये नॉर्मल पेन है, इतना कुछ नहीं हुआ है आपकी बीबी को, आप खाना खा लीजिए, मुझे सुन रहे होते हैं। और मुझे तो लगता है आपको मुझे अपने घर में ही एक कमरा अलॉट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे घर से यहाँ आने में मुझे 10 मिनट से कम टाइम नहीं लग सकता है और मैं इसके लिए रोज़ रोज़ नहीं आ सकती हूँ। उसकी बातों में नाराज़गी साफ छलक रही थी, जिसे सुनकर वेदांत ने अपना सिर खुजाते हुए अनाही की तरफ देखा, जो उसे अब घूर घूर कर देख रही थी। अनाही ने फिर डॉक्टर को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो बस अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उसको दर्द में देखकर बहुत पैनिक मोड में आ जाते हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आइंदा से ये आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। बाकी मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, आप चाहें तो हमारे घर रह सकती हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, मेरी भी फैमिली है, मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो स्कूल जाती है, इसलिए मुझे उसे रेडी करना होता है सुबह सुबह। ये सुनकर अनाही ने हल्के में सिर हिलाया और फिर डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर बेड की तरफ देखा, जहां अब विहा आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही थी। वेदांत धीमे कदमों से चलकर विहा के पास गया और फिर उसके पास बैठकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, सॉरी टोमेटो, जब तुम्हें दर्द होता है तब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये सुनकर विहा निहाल सी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं है, आप बस मेरे पास रहा करो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ये सुनकर वेदांत हरकत से मुस्कुराया और उसके करीब बढ़कर आहिस्ता से उसके माथे पर किस कर लिया। उसके बाद वेदांत ने वो खाने की प्लेट उठाई और फिर विहा के पास आकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसे ये नहीं पता था कि इस खाने में कुछ ऐसी दवाई मिलाई गई है जिसके बाद उसकी टोमेटो की तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ने वाली है। विहा भी खुश होकर खाना खा रही थी, क्योंकि वेदांत ने जाकर ही में बहुत अच्छा खाना बनाया था और धीरे धीरे उसकी कुकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती जा रही थी। पार्थ रूही के कमरे में उसके सामने किसी राजा की तरह बैठा था और रूही उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मन ही मन वो उससे भर भर के गालियाँ निकाल रही थी। पार्थ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ये बताओ बटरफ्लाई, आज शाम को तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तुमसे कहा है ना कि घर का सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें। रूही ने रुआंसी सूरत बनाकर कहा, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, वहां से आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं, बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। आई एम सॉरी, अब तो रात के 10 बज चुके हैं, क्या इस वक्त आप मुझे कुकिंग करवाएंगे? रूही ने मासूम सा फेस बनाकर पार्थ की तरफ देखा, जैसे उसका यह चेहरा देखकर तो पार्थ मान ही जाएगा और उसे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा रहा। पार्थ ने ग्लास साइड टेबल पर रखा, धीरे से उठा और रूही के करीब आया। उसकी हाइट रूही से काफी ज्यादा थी, इसलिए वो नीचे झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। उसकी सांस रूही के गाल पर लग रही थी। बटरफ्लाई, तुम्हें लगता है ये मासूम चेहरा और वो आंसू भरी आंखें मुझ पर असर करेंगी? रूही ने सिर नीचे कर लिया, लेकिन पार्थ ने उसके चिबुक को उंगली से पकड़कर ऊपर उठाया, जबरदस्ती आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है? अच्छा, तो याद रखो, तुम्हारी मम्मी अभी भी मेरे कंट्रोल में है। अगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी तो कल सुबह ही तुम्हें उसकी लाश की फोटो मिल जाएगी। रूही की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे, वो पीछे हटने लगी, लेकिन पार्थ ने उसकी कमर पर हाथ रखकर रोक लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दबाव नहीं, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अब सुनो अच्छे से बटरफ्लाई, रात के 10 बज रहे हैं, सही कहा तुमने, लेकिन मेरे लिए समय कोई मायने नहीं रखता। तुम अभी किचन में जाओगी, कुछ भी बना लेना, एग फ्लाई, ब्रेड टोस्ट, जो भी, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाना है। और अगर एक बार भी मेरा मन नहीं भरा तो? उसने बात अधर में छोड़ दी। रूही की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोली, प्लीज अंकल, मैं थक गई हूँ, कल सुबह बना दूंगी, वादा करती हूँ। पार्थ ने हल्के से हंसा, वो हंसी जो डरावनी लगती थी। कल सुबह? नहीं बटरफ्लाई, आज रात, अभी। वो रूही का हाथ पकड़कर खींचा और कमरे से बाहर ले गया। रूही विरोध नहीं कर पाई, बस चुपचाप चलती रही। किचन में पहुंचकर पार्थ ने उसे काउंटर पर छोड़ा और खुद कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कोई शो देख रहा हो। उसने बेहद गहरी और डरावनी आवाज में कहा, शुरू करो और याद रखना मैं देख रहा हूँ, कोई चालाकी नहीं। रूही ने आंसू पोंछे, हाथ कांपते हुए फ्रिज खोला। वो अंडे निकाल रही थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कितने दिन ऐसे कटेंगे, मम्मा मुझे निकाल लो यहाँ से। पार्थ उसे देखता रहा चुपचाप। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन आंखों में कुछ था, जैसे वो रूही की हर हरकत को नोट कर रहा हो। शायद वो जानता था कि रूही का ये मासूम चेहरा सिर्फ एक मुखौटा है, या शायद वो खुद भी थोड़ा प्रभावित हो रहा था। रूही ने अंडे तोड़े, पैन गरम किया। पार्थ ने अचानक कहा, तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डर से काम नहीं चलता? रूही ने पलट कर देखा, आंखों में आग। डर से नहीं, लेकिन मजबूरी से चलता है, और मजबूरी आपने पैदा की है, पार्थ ने बेहद शांत आवाज में कहा। अच्छा, तो मजबूरी में भी अच्छा खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। रूही ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना बनाने लगी, लेकिन उसके मन में अब एक नई आग जल रही थी। एक दिन मैं ऐसे ही छोड़कर भाग जाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रूही के आंसू गिरते जा रहे थे और वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसे भी पता था कि उसे खाना बनाना नहीं आता है, और ऊपर से पार्थ की डिमांड कि वो उसे अच्छा खाना बना कर दे। थोड़ी देर बाद ही रूही ने पार्थ के लिए ब्रेड बना दिया था और साथ में एग भी फ्राई कर दिया था, और वो दोनों चीजें ही बुरी तरह जल चुकी थी, जिन्हें देखकर रूही ने डरते हुए अपने मन में कहा, पता नहीं ऐसे खाने को अंकल कैसे खाएंगे, इससे अच्छा होता बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेते। पता नहीं मुझे परेशान करके कौन सी खुशी मिलती है, एक बार के लिए अगर मैं अच्छा खाना बनाती तो मेरे साथ जिद करना भी समझ में आता, पर इस खाने के लिए इस तरीके से धमकी देना कहीं से भी लॉजिकल नहीं है।